पूज्य श्री से प्रार्थना करूंगा, हे गुरुदेव अपनी पीयूष वाणी से हमें उपकृत करें। परम पूज्य गुरुदेव
सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के, हम सभी लोगों ने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जीवन के विकास की बहुत सारी बातों पर विचार किया है। हम अपने जीवन में जो ऊंचाई एक साधक छू लेता है उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम सिर्फ उसकी भावना भाएं कि हम भी उस ऊंचाई तक पहुंचें जिस पर कि आचार्य उपाध्याय और साधुजन अपने जीवन को ले जाते हैं, और जितना उनके जैसे बनने की भावना रखते हुए हम कर सकें उतना हमें करना चाहिए। वो हमने पिछले दिनों शुरुआत की है। हमने अपनी बहुत सारी बाह्य क्रियाओं को और अपने अंतरंग के भावों को बदलने का प्रयास किया है। जानने के साथ साथ हमने अपने जीवन में उन सब चीज़ों का अनुभव करने के लिए एक प्रक्रिया भी शुरू की है। सुबह दोपहर शाम दो दो घड़ी या जितना हमें समय मिलता है उतना समय हम बैठ करके विचार करें, देखें कि हमारा अपना स्वभाव क्या है, अपने आप के बारे में हम विचार करें। ऐसा करने से हमारे भीतर तमाम विषमताओं के बीच भी एक समता का भाव, साम्य भाव उत्पन्न होगा। होता भी है, जितनी देर हम इस तरह की प्रक्रिया से गुजरते हैं उतनी देर हमारे जीवन में सुख दुख, हर्ष विषाद, लाभ हानि, जय पराजय, शत्रु और मित्र, इन सब के बीच हमारे मन में समता का भाव आता ही है, वो लगातार बना रहे। इसके लिए हम इस अभ्यास को रोज रोज करें जिससे हमारी क्षमता बढ़े। जितनी हमारी क्षमता बढ़ती चली जाती है उतना हमारे भीतर धैर्य, सहनशीलता, सहिष्णुता, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव, ये सब चीजें बढ़ती हैं। हमारा क्रोध, हमारी कषायें, वो धीरे धीरे अपने आप शांत होती चली जाती हैं। यह अभ्यास, इसका नाम ही सामायिक है, जिस पर कि हम पिछले दिनों से लगातार विचार कर रहे हैं। कुछ बातें और सामायिक के बारे में हमें समझ लेनी चाहिए। हमारे यहाँ ध्यान और सामायिक, इन दोनों प्रक्रियाओं को शावक के लिए थोड़ा सा अलग ढंग से व्याख्यायित किया गया है। शावक के जीवन में ध्यान करने का अपना ढंग वो सामायिक के रूप में ही है। वास्तव में जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है वह तो व्रत और उसमें भी विशेष रूप से महाव्रतों को धारण करने वाले के ही संभव होता है। एक गृहस्थ तो अधिकांश समय अपना आर्ध ध्यान रौद्र ध्यान में ही व्यतीत करता है। जीवन में हमारे अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होने पर हम विचार करते हैं कि ये कभी हमसे अलग ना हो जाएं, या कि हमारे विपरीत कोई स्थिति निर्मित होती है तो कब इससे मैं बचूं। शरीर में व्याधि हो जाने पर हम चिंतित बने रहते हैं कि कब दूर होगी। वर्तमान के भौतिक सुखों के बारे में निश्चिंतता नहीं आ पाती क्योंकि आगामी भौतिक सुखों की चिंता हमें चलती रहती है। गृहस्थी में इस तरह का चिंतन लगातार चलता रहता है। इतना ही नहीं, घर गृहस्थी में देखते हैं अपन कि हमारे अपने जीवन में, जो गृहस्थ जीवन में अनुभव करते हैं कि दूसरे के दुख में भी कई बार हम हर्षित हो जाते हैं, दूसरे से झूठा व्यवहार करके, झूठ बोल के भी आनंदित हो जाते हैं, चोरी करके भी हम कभी कभी आनंद मान लेते हैं, परिग्रह के ज़्यादा संचित हो जाने पर भी हम आनंदित हो जाते हैं। ये जो प्रवृत्ति है ये हमारी अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, ये हमें पतन की तरफ ले जाने वाली प्रवृत्ति है। ऐसा चिंतन जिसमें कि दूसरे को पीड़ा हो, झूठ बोलकर के हम आनंदित हो, दूसरे के दुख में हम सुख महसूस करें, ऐसा चिंतन, या दूसरे को कैसे मैं दुख पहुंचाऊं इस तरह का चिंतन, मैं कैसे झूठ बोलूं, ये कि मैं कैसे चोरी करूं, कैसे परिग्रह ज्यादा से ज्यादा संचित करूं क्योंकि मैं उस सब में आनंद मान रहा हूं, इसलिए इन सब प्रक्रियाओं में अपने मन को एंगेज करके रखना, ये भी तो ध्यान ही है, ये रौद्र ध्यान कहलाता है। एक गृहस्थ के जीवन में चिंता और चिंता रूप जो रौद्र ध्यान है, और इस तरह का भौतिक सुखों में आनंद रूप जो रौद्र ध्यान है वो निरंतर चलता रहता। उससे बचाने के लिए, धर्म ध्यान में लगाने के लिए एक ही प्रक्रिया दी है आचार्य भगवंतों ने कि थोड़ी देर सुबह दोपहर शाम पांच पापों से मुक्त होकर के तमाम विषमताओं के बीच में भी और समता भाव रखने का अभ्यास करना, इतना ही धर्म ध्यान पर्याप्त है। अपने किए गए दोषों का स्मरण करके उनके लिए आगे नहीं करूंगा इस तरह का भाव रखना, और जो बेहतर हो सके उसको करने के लिए विचार करना, यही ध्यान पर्याप्त है। हम सोचते हैं कि अलती पलती मार के आंख मीच करके बैठ जाने का नाम ध्यान है, नहीं, इतना ही नहीं है। हम 24 घंटे अच्छे परिणाम रख करके अपने ध्यान को धर्म ध्यान बना सकते हैं। ध्यान तो सब करते हैं भैया, भोजन बनाने वाली माँ भी इस बात का ध्यान रखती है कि रोटी की जगह हाथ आग में ना चला जाए, रास्ते से चल करके यहाँ आने वाला भी ध्यान रखता है कि किसी अपवित्र वस्तु पर पैर ना पड़ जाए, गड्ढे में पैर ना पड़ जाए, किसी कांटे और कील पर पैर ना पड़ जाए, इतना ध्यान तो उसे भी रहता है। हर काम हम ध्यान पूर्वक करते हैं, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भाव हमारे अंदर निरंतर चलते रहते हैं, ऐसा ध्यान तो हम 24 घंटे करते हैं, उस ध्यान को हम कैसे एक दिशा दे सकें, यह सामायिक के दौरान अभ्यास किया जाता है। अशुभ मन वचन काय की क्रिया से निवृत्त होकर के जब हम
शुभ मन वचन काय की क्रिया का अभ्यास करते हैं वही ध्यान की प्रक्रिया है। सो सामायिक में हम सिर्फ उसका अभ्यास करते हैं, बाकी 24 घंटे उस अभ्यास का प्रतिफल हमारे जीवन में झलकना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 10 मिनट को कोई प्रक्रिया दोहरा ली, उसके बाद उस प्रक्रिया के रिजल्ट्स हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आए। नहीं, वो अभ्यास निरंतर होगा सामायिक का, तब हमारे अपने शेष जो 23 घंटे हैं उन सब को भी एक ठीक दिशा मिलेगी। हो सकता है कि फिर हम 24 घंटे भी दुकान पर बैठे हों, चाहे बाजार में खड़े हों, चाहे धर्म सभा में हों और चाहे अपने घर में हों, हम हर स्थिति में अपने परिणाम संभाल करके निरंतर धर्म ध्यान कर सकते हैं। खाते पीते आते जाते सब अवस्थाओं में, सोते जागते भी कोई चाहे तो धर्म ध्यान कर सकता है। अकेले एक स्थान पर बैठ करके जो हम सामायिक की प्रक्रिया करते हैं वो इतनी अधिक सामर्थ्यवान हमें बनाती है कि फिर हम हर परिस्थिति में भी समता भाव रख लेते हैं। और वो समता भाव हमारे बने रहें, अहंकार और संक्लेश से, राग द्वेष से हम बच जावें भैया, वही ध्यान है। जितने क्षण हमारे राग द्वेष से बचने के हैं, जितने क्षण समता के हैं, वे सब सामायिक के क्षण हैं। वो सिर्फ एक जगह बैठ करके ही संपन्न हो ऐसा नहीं, रास्ते चलते भी अगर मेरी सबके प्रति समता है तो वो मेरा धर्म ध्यान चल रहा है। और चाहे हम धर्म सभा में बैठे हैं और वहाँ भी हो सकता है कि हम समता भाव न रख सकें, तो वहाँ भी हम धर्म ध्यान नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ भी हम आर्त ध्यान में ही लीन हो जाते हैं या कि रौद्र ध्यान चलता रहता। इसलिए ये जो हम सामायिक की प्रक्रिया का अभ्यास कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमारे जीवन में ये आना चाहिए कि फिर हमारी चेतना इतनी परिष्कृत हो जाए, हमारी एकाग्रता इतनी बढ़ जावे, हमारे व्यवहार में सहजता आ जाए। इन तीन बातों पर विचार कर लेते हैं आज अपन, कि एकाग्रता सामायिक के समय इतनी बढ़ जाए कि फिर वो चीज हमारे ध्यान से और अलग हो ही ना पाए, फिर निरंतर उस चीज का ध्यान बना रहे। जैसे कि किसी चीज की अपन को लगन लग जाती है तो फिर अपन कुछ भी करते रहें वो चीज अपने स्मरण में बनी रहती कि नहीं, अभी भैया और तो सब ठीक है, वो काम करना है, सब काम कर रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ क्या ध्यान में है कि वो काम करना है। ठीक ऐसे ही अगर हम सामायिक में अपने उस वीतराग भाव का अभ्यास करें, राग द्वेष के बीच समता का अभ्यास कर लेवें, तो संसार के कामों के बीच में भी और आसानी से हम उस समता भाव को बनाए रख सकते हैं। ये एकाग्रता हमारी बननी चाहिए। अभी तो हम पूजा करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जाप भी दे लेते हैं, पर इन सब चीजों में हमारी एकाग्रता इतनी नहीं बन पाती कि वो हमारे शेष जीवन को भी रेगुलेट कर सके, वो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करे। अभी उतने क्षण तो हमारे सार्थक हो जाते हैं जितने क्षण हम पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं या कि और धर्म ध्यान की प्रक्रिया करते हैं, वो क्षण तो हमारे सार्थक हो जाते हैं, लेकिन वे क्षण हमारे इतने प्रबल नहीं हो पाते कि बाकी 23 घंटे भी वे हमारे सार्थक कर सकें, वो एक घंटा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। ऐसी एकाग्रता के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए ताकि हमारे भीतर वो अंदर तक उसका गहरा प्रभाव पड़े। अगर उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है तो प्रभाव गहरा पड़ता है। अपन कभी अलग से एक प्रयोग और करेंगे, वो 10-12 दिन का, उसमें ये देखेंगे कि इस कंसंट्रेशन को बनाने की प्रक्रिया क्या है। अभी तो सिर्फ ये देखें कि कंसंट्रेशन बन जाने पर हम किस तरह उससे लाभ ले सकते हैं, वो एकाग्रता हमें कितना लाभान्वित करती है। टॉल्स्टॉय ने अपना एक नॉवेल लिखा, नाटककार भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, दार्शनिक भी थे, विदेशी राइटर हैं वो, लेकिन शाकाहारी थे। मैं उदाहरण सोच समझ के ही देता हूं, नहीं तो बाद में आप कहें कि इनको कहां से ले आए। हाँ, और दूसरे नहीं मिलते क्या आपको? मिलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिसको विरासत में ये सब चीजें मिली हैं वो तो इनका निर्वाह कर ही लेता है, जिसको ऐसे थॉट्स विरासत में नहीं मिले वो भी इनको अगर फॉलो करता है तो उसमें ज्यादा शाबाशी है। हमें जो चीज अपने कुल परंपरा से मिली है उसका हम निर्वाह करें तो कोई ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है, बल्कि उसे हमें हम जब इजाफा करें, उसे हम बढ़ाएं तो प्रशंसा होगी। हमारे घर परिवार में कोई अनुव्रत धारण करने वाला हो और हम अनुव्रत धारण कर ले, इतने में हमारी कोई शाबाशी नहीं है, हम महाव्रत धारण करें तो माना जाएगा कि हाँ अपने कुल की परंपरा को हमने और आगे बढ़ाया। और जहां अनुव्रत धारण करने की रत्नत्रय की परंपरा ही ना हो और वहां कोई व्यक्ति अगर उस रत्नत्रय की आराधना के लिए उत्सुक हो तो बताइएगा कि वो महत्वपूर्ण होगा कि नहीं। उन्होंने अपने जीवन में एक संस्मरण लिखा कि जब वे कोई नाटक का प्लान कर रहे थे लिखने का, तो इतने अधिक एकाग्र हो जाते थे अपने पात्रों के साथ कि वे भूल जाते थे कि मैं कौन हूं। इतनी एकाग्रता, जैसे कि हमारी भी एकाग्रता है, हम भूल गए कि हम कौन हैं। हम तो अपने को मनुष्य, और मनुष्य में भी मैं इनका पिता, या कि मैं इनकी मां, या कि मैं इनका ये, या कि मैं एक लेमैन, या कि मैं एक ऑफिसर, ये याद रहता है अपने को, मेरा अपना स्वरूप नहीं। इतनी एकाग्रता हो गई शरीर के साथ में अपनी, उस एकाग्रता को तोड़ने की एकाग्रता बहुत कठिन है। अपने आत्मस्वरूप में इतनी एकाग्रता हो जावे कि अभी अभी तक मैंने जिसमें जो मेरा स्वरूप नहीं है उसमें अपनी एक मेकता मान रखी थी वो टूट जावे। ये अभ्यास है सामायिक का, छोटा मोटा नहीं है। अकेले ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और माला फेल ली, हो गया सामायिक, हो गई, इतना तो अपन करते हैं, ये तो कोई छोड़ने की बात नहीं, करने की है, लेकिन इससे आगे बढ़ना, तब ये स्थिति निर्मित होगी, ऐसी एकाग्रता अपनी चेतना के साथ में बन सकेगी। वो अपने पात्रों के साथ एकमेक हो जाते थे। एक दिन उन्होंने लिखा कि मैं सीढ़ियां उतर रहा था लाइब्रेरी की, और सीढ़ियां इतनी चौड़ी थी कि दो लोग आसानी से उतर सकते हैं, दोनों तरफ सीढ़ियों के दीवार नहीं थी, कोई रेलिंग भी नहीं थी, खुली सीढ़ियां थी। नीचे उतरते समय वे इतने अधिक एकाग्र थे अपने उस नाटक के पात्रों के साथ में कि उनसे बातचीत करते हुए मानो चले जा रहे हैं। उन्हें यह एहसास हुआ कि मैं जिसको अपने नाटक का नायक बना रहा हूं वो मेरे साथ चल रहा है, मैं उससे बात कर रहा हूं, और उतरते चले जा रहे हैं। अभी आधी सीढ़ियां ही उतरे थे कि उतने में नीचे से कोई व्यक्ति आता दिखा, तो उन्होंने सोचा कि अरे सीढ़ियां तो दो लोगों के ठीक ठीक गुजरने लायक हैं, हम तीन हो जाएंगे तो फिर जरा खिसकना चाहिए मुझे, तो उन्होंने खिसकना शुरू किया और बाजू में, वो जैसे जैसे ऊपर आता जाता ये और बाजू में खिसकते जाते कि तीन लोगों को निकलने के लिए जगह कैसे मिलेगी, और इस खिसकने की प्रक्रिया में वे सीढ़ियों से नीचे गिर गए। नीचे गिरे तो वो व्यक्ति बड़े अचरज में, उसने इनको जाके उठाला संभाला, क्या आप इतने बड़े दार्शनिक हैं और इतने बड़े राइटर हैं, और आखिर ये एक कैसे हुआ, हम तो नीचे से आ रहे थे, हमें पर्याप्त जगह थी निकलने की, आप बेकार में खिसकते चले गए। बोले वो तो आप समझ में आया मुझे, उस समय तो मुझे ये लग रहा था कि एक आप नीचे से आ रहे हैं और दो हम यहां नीचे से ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, तो तीन को जगह कम पड़ेगी। ये तो गिरने के बाद मेरी एकाग्रता टूटी, तब याद आया कि मैं तो एक ही था, मैं तो इस भ्रम में था कि हम दो नीचे उतर रहे हैं। इतनी एकाग्रता सच सकती है क्या? है तो अपने अंदर एकाग्रता तो है, जिस काम में लग जाते हैं, दुकान में व्यक्ति सुबह से शाम तक लग जाता है तो भूल ही जाता है, भोजन तक भूल जाता है, टिफिन बना बनाया रखा रह जाता है कई बार लोगों का, इतना अधिक अपने व्यापार में मशगूल हो जाते हैं, इतनी एकाग्रता, फिर फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसे संसार के बहुत सारे काम हैं, एकाग्रता किसी को सिखाई नहीं जाती है, बस एकाग्रता किस दिशा में करनी है ये भर सीखना आवश्यक। हम तो अशुभ विचारों में निरंतर एकाग्र हैं, चिंतन चलता ही रहता, एक अंतर मुहूर्त तक अगर किसी बात में आप एंगेज हैं तो मानिए वो ध्यान हो गया। एक अंतर मुहूर्त 48 मिनट तक एक ही बात की प्लानिंग चल रही है, किसी भी तरह की, शुभ हो या कि अशुभ हो, हमें सिर्फ ये करना है कि यह एकाग्रता एक अंतर मुहूर्त तक किसी शुभ विचार में हमारी हो जावे तो हमारा ध्यान व्यवस्थित हो जाएगा, हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में कारण बनेगा। और ऐसा करने से क्या होता है, हमारी चेतना परिष्कृत होने लगेगी। चेतना परिष्कृत होती, इसके मायने क्या है आप सोच सकते हैं? जिसकी चेतना जितनी परिष्कृत होगी उतना ज्यादा उसका प्राणी मात्र के प्रति और सद्भाव होगा, ये उसका क्राइटेरिया है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, एक वाक्य लिखा हुआ है, यह मेरा है यह तेरा है, ऐसे भाव से कौन ऊपर उठता है जिसका चरित्र बहुत उदार और विशाल होता है, जिसकी चेतना बहुत परिष्कृत होती है, वही मेरे तेरे के भाव से ऊपर उठ करके प्राणी मात्र को उसके प्रति सद्भाव रख करके अपना मानता है। ऐसी अपनी चेतना का विकास तभी हो सकता है। पर देखते अपन ये हैं कि कितनी भी धार्मिक क्रियाएं अपन दोहरा लेते हैं, कितनी तो सामायिकें हमने करी होंगी, लेकिन हमारी चेतना परिष्कृत क्यों नहीं हुई? होना चाहिए थी, ये कसौटी है उसकी कि हमारे चेतना में इतना विशुद्धि आनी चाहिए थी कि फिर मेरे तेरे का भाव, ये तो नरक में होता है मारी थारी। हाँ, वास्तव में देखा जाए थोड़े संस्कार अपने उसके हैं, जब तक अपन मेरा तेरा करते रहते कि ये मेरा ये तेरा, ये जब जब अपने मन में आ जाए तो विचार करना कि क्या कर रहे हैं हम, ये तो नारकी जीव करता है, मैं तो मनुष्य हूं, चेतनावान हूं और चेतना में भी विशेष चेतनावान हूं मैं, ऐसा विचार आ जाना चाहिए तो मेरे तेरे के भाव से ऊपर उठ जाए। जितना मेरे तेरे के भाव से ऊपर उठेंगे उतनी चेतना विशुद्ध होगी, और जितनी एकाग्रता अपने स्वरूप के प्रति होगी उतना मेरे तेरे के भाव से ऊपर उठ जाएंगे। ये प्रक्रिया बिल्कुल जुड़ी हुई है उन सब से। तो हम एकाग्रता साधें अपने चेतना के स्वभाव से तो हमारी चेतना विशुद्ध होगी, और उस विशुद्धि से हमें मेरे तेरे का भाव धीरे धीरे करके समाप्त होगा। राम तीर्थ विदेश पहुंच गए, फ्लाइट से एरोड्रम पर उतरे नीचे, तो एक नज़र उन्होंने दौड़ाई, जैसे कि अपन कभी किसी नई जगह पे उतरते हैं ट्रेन से या कि बस से या कोई एरोप्लेन से भी उतरता है, तो एक बार देखता है कि कोई है मेरा परिचित यहाँ स्टेशन पर, या मुझे कोई लेने आया है क्या, ऐसा एक सहज भाव अपने भीतर आता है। कोई परिचित मिल जाता तो पूछ लेते कहाँ कैसे जाना है, मिल जाता है तो बड़ी प्रसन्नता होती, नहीं तो फिर जैसा बनता है अपन करते। तो उनका भी शायद यही था कि देखें यहाँ पर कोई है क्या। उनको ऐसा देख करके एक बाजू में खड़े हुए विदेशी व्यक्ति ने कहा कि क्या यहाँ पर इस देश में आपका कोई मित्र नहीं है क्या, आप ऐसे बहुत देर से देख रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं, कोई आने वाला है क्या? तो इन्होंने मुस्कुरा करके उसके कंधे पर हाथ रख के कहा कि आप ही तो मेरे मित्र हैं, आप ही का तो इंतजार कर रहा था। क्या ऐसी है हमारी चेतना कि हम किसी को इस तरह कह सकें? ऐसा नहीं, हम तो चाहे जिसको ऐसा कह सकते हैं लेकिन उतनी ही निर्मलता के साथ, उतनी ही चेतना की विशुद्धि के साथ ऐसा कह सकते हैं क्या? ये हमारे मन में आना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में ऐसा भाव आने लगे सहज रूप से। विनोबा के माँ के ऊपर एक जिम्मेदारी आई कि उनके पिता एक अनाथ बालक को ले आए, ये पढ़ेगा लिखेगा तो स्कूल में रहेगा भी, इसकी व्यवस्था कर दी है, भोजन तुम करवा दिया करे इसको। तो उसकी माँ रोज जो है, उनकी माँ विनोबा की उस अनाथ लड़के को भोजन के समय पर आने पर प्रेम से भोजन कराती थी, गरम गरम भोजन कराती थी। एक दिन विनोबा ने टोक दिया माँ को कि माँ मैं तो तुम्हारा सगा बेटा हूं, तुम तो ये कहती हो कि सब में समान भाव रखना चाहिए, सब में भगवान है, फिर आपके व्यवहार में तो ये अंतर दिखाई पड़ता है, आप मुझे ठंडी भी परोस देती हैं कभी कभी भोजन सामग्री, और इसको तो आप गरम गरम ही खिलाती हमेशा बढ़िया बढ़िया चीज। तो विनोबा की माँ ने क्या जवाब दिया कि बेटे मैं कहती हूँ वो ठीक कहती हूँ तुमसे कि सबके भीतर एक जैसा ही भगवान है, लेकिन अभी इस अतिथि के भीतर मुझे भगवान दिखाई देता है, तेरे भीतर तो मुझे अपनी अभी अपना मेरा बेटा दिखाई पड़ता, जिस दिन मैं तेरे भीतर भी वो देखूंगी तो तुझे की भी गरम गरम खिलाऊंगी, अभी तो बेटा दिखाई पड़ता है। ये ही अपने साथ भी है, इतनी अधिक हमारी अपने पराये की प्रवृत्ति हो गई है कि हमें सहज रूप से नहीं दिखाई पड़ता हमें सब में कि यह भी मेरा ही अपना है, नहीं ये तो कोई और है, ये मेरा अपना है। दिन भर हम करते क्या हैं अगर विचार करें तो, गौर से विचार करें। मैं भी अभी उससे ऊपर नहीं उठ पाया हूं, ऐसा मत समझना कि मैं ऊपर उठ गया हूं। हम सब सबके भीतर, क्योंकि इतना गहरा संस्कार है, संस्कार को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम एरिया बढ़ा सकते हैं। हमारे पराये का एरिया घटता चला जाए और प्राणी मात्र के कल्याण के प्रति हमारे मन में सद्भाव आता चला जाए, बढ़ता चला जाए, ये तो भी हमारे जीवन में चेतना का परिष्कार हो सकता है। क्योंकि जैसी चेतना मेरे भीतर है वैसी ही सबके भीतर है, तब फिर सबको कल्याण करना चाहिए, सबके कल्याण में मैं निमित्त बनूं, सबके प्रति सद्भाव ही रखूं। ऐसा चेतना का परिष्कार हम चाहें तो कर सकते और व्यवहार में हमारे बहुत सहजता आ सकती है। सहज व्यवहार के मायने भी यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। व्यवहार की सहजता के मायने यही है कि मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, सहज व्यवहार करता हूँ, किसी के साथ भी मैं और बुरा व्यवहार नहीं करता। ऐसा अपन देखें दिन भर में क्या एक आध दिन ऐसा कर पाते हैं? नियम तो लेते हैं अपन, और दूसरे प्रकार का ये नियम भी लेना चाहिए कि आज मैं सबके प्रति सद्भाव रखूंगा, किसी के प्रति भी अपना मन खट्टा नहीं करूंगा, कड़वा नहीं करूंगा, आज सबसे बहुत अच्छे से बोलूंगा, और अगर नहीं बोल पाऊंगा अच्छे से तो नहीं बोलूंगा, चुप ही रह जाऊंगा। हमारे एक उनको इंप्रेशन बहुत पुराना है 1968 में, और एक शुल्लक दया सागर जी आए थे, उन्होंने एक बहुत बहुत शांत उनका स्वभाव था, वो जैन नहीं थे, पर उन्होंने अपना कैलकुलेशन कर लिया था कि मेरी आयु बहुत थोड़ी रह गई, मुझे अपना कल्याण करना चाहिए, और उन्होंने, मुझे मुनि महाराज का नाम याद नहीं किनसे दीक्षा ली थी, छुल्लक दीक्षा ले ली थी, और एमए इंग्लिश में किया था उन्होंने, और सर्विस छोड़ के आ गए थे वो बैंक की, और फिर थोड़े ही समय रहे वो छुल्लक 1971 में तो उनका और समाधि हो गई। वो मैंने उनका देखा एक भजन, मुट्ठी को बांधे आया था मैं हाथ पसारे जाऊंगा, वो छपा, और फिर वो सबको दिया करते थे जो भी उनसे मांगता था। तो मैंने मांगा उनसे, बहुत मैं छोटा था उस समय, 10-12 साल का होऊंगा, तो मैंने कहा कि आप इस पर अपना नाम लिख के दें। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो क्या लिखा था उन्होंने, सत्य के लिए हाँ, असत्य के लिए ना, प्रेम से बोलने के लिए हाँ, घृणा से बोलने के लिए ना, और अपना नीचे नाम। वो मुझे आज भी याद है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते एक दिन में? हमारे व्यवहार में इतनी सहजता नहीं आ पाती, आ सकती है हम अगर अभ्यास करें तो। ये सामायिक का अभ्यास हमें सहज प्रवृत्ति करने में मदद करेगा, वरना हम अकेले सामायिक की प्रक्रिया में ही कुछ दोहरा लें उतने से काम नहीं चलेगा। हमारी प्रवृत्ति में उतनी ही समता और उतनी ही सहजता आ जावे, ये उसका प्रतिफलन हमारे जीवन में दिखना चाहिए। ठीक है, अभ्यास करेंगे, जितना आ पाएगा उतना करेंगे, पूरी तरह से आ जाए तो भगवान ही नहीं हो जाएंगे फिर, अभी एकदम थोड़ी होएंगे, अभी धीरे धीरे करके जितना जिसके जीवन में आ जाए उतना अभ्यास आसानी से किया जा सकता है सहजता का। एक दिन, एक घंटे आज मैं सबके प्रति सद्भाव रखूंगा, एक घंटे किसी से भी कड़े वचन नहीं बोलूंगा, असब वचन नहीं बोलूंगा, मैं कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं करूंगा जिससे कि दूसरे के प्रति दुर्भावना व्यक्त होती हो, ऐसे मन वाणी और शरीर सब में मेरे घंटे पर सद्भावना ही बहे, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता अभ्यास से, तो ये सहज प्रवृत्ति कहलाती। छोटे बड़े का भेदभाव खत्म हो जाएगा, अपने पराये का खत्म हो जाएगा, शत्रु मित्र का खत्म हो जाएगा, सारे भेदभाव, नौकर और मालिक का भेद। फिर हो सकता है कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं मालिक बनकर के, उसी पर आपका मन अपने नौकर को बिठाने का हो जाए, पर जरा संभल के बिठा ला, नहीं तो वो सिर पे बैठ जाए। अब नहीं, दोनों चीज नहीं, तो आपको मैं ऐसी चीज बता दूं और आप कहो कि ये और उपद्रव करवा दिया आपने। आज के समय में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो जिसको हम जरा ऊंचा उठाएंगे वो और हमारे चरणों में झुकेगा, ऐसे व्यक्ति को ऊंचे उठाना, हाँ ये सावधानी रखना, नहीं तो हम जिस चाहे को और ऊंचा उठाएंगे वो ऊंचा तो उठेगा नहीं, बल्कि सिर पे बैठ करके ऊंचा उठेगा, जैसे कि मां अपने बेटे के कहने पर भी उसे अपने सिर पे बिठा लेती है, तो सिर पे बैठने पर भी बेटा ऊंचा नहीं होता, वो जानता है कि मां मेरी बड़ी है। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो उसको ऊंचा उठाना, हाँ समान भाव सबके प्रति रखने का मतलब ये नहीं है आप उसका अन्यथा अर्थ नहीं ले रहे। तो नौकर और मालिक के बीच भी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो कि वे एक दूसरे का यूज नहीं कर रहे हैं, वे एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। मालिक नौकर के सहयोग को के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे और नौकर भी मालिक के प्रति कृतज्ञ रहे, एक ऐसा रिश्ता हमारे सारे संबंधों में चाहे हम तो बन सकता है। फिर शत्रु मित्र का रिश्ता कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता। फिर तो सब परस्पर सिर्फ सहयोग का ही रिश्ता बनेगा। और अगर ऐसा रिश्ता हमारा सबके प्रति हो जाए, प्राणी मात्र के प्रति, फिर देखिएगा फिर हमारी चेतना कितनी परिष्कृत होती हो, कितना सहज व्यवहार हमारा होता। ये सारी चीजें हमारे जीवन में अवलोकन करना चाहिए अपने ही जीवन का, कि ये कितना आया कितना नहीं आया। नहीं आया कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे, लेकिन कभी नहीं आ पाएगा ऐसा नहीं, आ सकता है। ये हम अभ्यास के द्वारा सुबह दोपहर शाम बैठ करके, इसी के लिए हमने ये प्रक्रिया शुरू की। एक छोटी सी घटना लिंकन के जीवन की, राष्ट्रपति रहे वो, कहां के थे सबको मालूम है, मतलब ठीक है, कंफर्म कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है अपने को। गलती भी हो सकता, मैं और कहीं का बोल देता तो फिर बाद में सुधारते। वो रास्ते से चले जा रहे थे और उनके अंगरक्षक और भी लोग जाते ही हैं बड़े व्यक्ति के साथ में। किसी के साथ में बहुत बड़े बहुत सारे लोग हो जाने से कोई बड़ा हो जाता है ऐसा नहीं। कोई देखा कि एक सामने से सामान्य सा व्यक्ति चला रहा है, नागरिक होगा वो। उसने राष्ट्रपति को देख करके उन्हें जो भी प्रणाम की प्रक्रिया थी कि हेड उतार करके माथा झुकाएंगे, वो प्रक्रिया की। तो जैसे ही उसने प्रणाम किया तो राष्ट्रपति लिंकन ने भी अपना हैट उतारा और उसको प्रणाम किया। अरे बाकी लोगों ने कहा कि अरे ऐसे कैसे। अब राष्ट्रपति को भी समझाने लगे वो जो अभी साथ में थे। होता है इस तरह, बहुत देखने में आता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप राष्ट्रपति हैं, हम आपके साथ इसीलिए हैं और आप हमारी तरफ तो जरा ध्यान रखो, आप भी ऐसा करोगे तो हमें कौन पूछेगा। ऐसा आ गया उनके मन में। अब राष्ट्रपति का जवाब देखिएगा, उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि मैं राष्ट्रपति हूं, लेकिन मुझे इससे ज्यादा यह याद है कि मैं मनुष्य हूं। मैं राष्ट्रपति बाद में हूं, मैं मनुष्य हूं और एक मनुष्य होने के नाते मेरे भीतर विनय और कृतज्ञता ये तो होनी ही चाहिए। सामने वाले ने मुझे बड़ा मान करके और मेरे प्रति अपनी विनय व्यक्त की है, तो एक राष्ट्रपति भी अगर मैं हूं तो मुझे विनय और कृतज्ञता के माने में एक नागरिक से कम तो नहीं होना चाहिए, मुझे उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आप मुझे राष्ट्रपति मानते हैं तो सामने वाला कमती विनय करे तो मुझे तो और ज्यादा विनयवान होना चाहिए। इसलिए मैंने ठीक उसी तरह से उसकी विनय की जैसे कि उसने मेरी विनय की। क्या ऐसा कर सकते हैं अपन? करना मत आप मेरे कहने से, बहुत झगड़े पड़ोगे आप, फिर तो यहां आना पड़ेगा इस वाले पर, यहां पर नहीं तो नहीं कर पाएंगे आप। वहां रह करके आप जिस चाय को हाथ जोड़ने लगेंगे तो वो पूछेगा नहीं कोई, इसलिए हाथ जोड़वाते रहो, लोग पूछते रहे, यही ना। अभी तक तो ऐसे ही कहा बनने कि अपना टेरर क्रिएट करके हाथ जुड़वाते रहो, नहीं, अपने प्यार से आप दूसरे से हाथ जुड़वा सकते हैं। आप सबके प्रति सद्भाव रख करके, सहज व्यवहार रख करके भी आप सबसे विनय पा सकते हैं। सबकी विनय करके, दूसरे की विनय करने से कोई छोटा नहीं होता, दूसरे को अपने समान मानने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि जो दूसरे को अपने समान मानता है वो बड़ा ही हो जाता है। ये विचार है, इस विचार को हम अपने जीवन में चाहें तो घटित करके भी देख सकते हैं। आचार्य भगवंतों ने तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति स्तपो निधिषु। जितना जितना झुकते हैं उतने उतने हम ऊंचे उठते चले जाते हैं, जितना जितना छोड़ते हैं उतना उतना हम पाते चले जाते हैं, जितनी जितनी श्रद्धा हम रखते हैं उतनी सुंदरता आत्मा की होती चली जाती है, और इतना ही नहीं जितनी दूसरे की प्रशंसा करते हैं उतनी यश और ख्याति हमारी बढ़ती चली जाती। बताइए, बड़ा कंट्राडिक्टरी लगता है, बड़ा विरोधाभास लगता है कि झुके और ऊंचे हो गए, दिख रहा है सामने कि नीचे हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, बाहर में भले ही नीचा हो जाता हो जो झुकने वाला, लेकिन हरिवंश राय बच्चन ने लिखा, मैं आपको वो सुनाऊं और बस पूरी बात हो जाए, दो लाइनें हैं उनकी, कि जो आपसे झुककर मिला होगा, जो आपसे झुककर मिला होगा मानिए वो आपसे बड़ा रहा होगा। देखिए आप, अगर लंबाई में बड़ा है तो मिलने के लिए झुक करके मिलना पड़ेगा, और वास्तव में जो चेतना में बड़ा होगा वो झुक करके ही मिलेगा। ये भी उसके पीछे भाव है, हम अपनी चेतना को इतना परिष्कृत करें हमारे व्यवहार में, ये जो ऊंच नीच भेदभाव अपने पराये का जो असहजता है वो असहजता हमारी दूर हो और हमारा व्यवहार सहज हो, इसी भावना के साथ हम अपने जीवन को सार्थक करें। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि,
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन कर।
विनय हो, एक ऐसी भावना जिसमें कि हम अपने जीवन को निरंतर अच्छा बनाते चले जाएं, ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ, और अपनी उस आत्म संपदा को हम प्राप्त कर सकें, एक ऐसा प्रयत्न, आज इन दो बातों पर हम और विचार करते हैं कि एक ऐसी समझ हमें प्राप्त हो जिससे कि हम अपनी आत्म संपदा को प्राप्त कर सकें। अपनी सुधि भूल आप दुख उपायो, ज्यों सुख न बचाल विसरी नलनी लटकायो। हमारे इस संसार में दुख पाने का कारण एक ही है कि हमने अपनी उस आत्म संपदा को, अपने उस आत्मस्वरूप को विस्मृत कर दिया है। हम एक ऐसी समझ अपने भीतर पैदा करना चाहते हैं जिससे कि हमें अपने उस आत्मस्वरूप के प्रति, उसकी प्राप्ति के प्रति एक लगन उत्पन्न हो सके। तोते को पकड़ने के लिए शिकारी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक एक रस्सी खींच के बांध देता है और उसमें तीन तागे उलट करके बांधता है और छोटी छोटी सी लकड़ियां उनके बीच में फंसा देता है, नीचे दाने बिछाता है। तोता सोचता है कि मैं दाने खाऊं और खा करके उड़ू तो सुरक्षा के लिए मेरे पास ये रस्सी भी है, फट से उस पर जाके बैठ जाऊंगा। और वो ऐसा ही करता है, और जैसे ही उस रस्सी में फंसी हुई लकड़ी पर बैठता है वो लकड़ी उसके भार से पलट जाती है। वो लगाई इसीलिए थी, और जैसे ही वो पलटती है तो जोर से वो अपने पैरों से उस लकड़ी को पकड़ लेता है, उलट जाता है। अब उल्टा टंगा हुआ है वो उस पर, जो सुख नभचाल विसरी नलनी लटकायो, उन क्षण में वह भूल जाता है कि पंख खोलकर वो आकाश में उड़ने की सामर्थ्य रखता है। वो भूल जाता है, वो सोचता है कि अब मैं पकड़ा गया, अब तो मेरे प्राण बचने वाले नहीं है। उस अपने स्वभाव को भूलने की वजह से वह संसार में बंध गया। हम सबके साथ भी यही हुआ कि अपनी सुध भूल आप, हमने अपने स्वरूप को भुला करके यो स्वात्मानं पश्यति स पंडिता, जो अपने आत्मा को जानता देखता अनुभव करता है वास्तव में वो पंडित है। हम सबके पास जो ज्ञान है वह ज्ञान तो हमारे संसार बढ़ाने में मदद करता है, हमें वो ज्ञान हासिल करना चाहिए जो हमें संसार से पार होने में मदद कर सके, एक ऐसी समझ हमारे भीतर उत्पन्न हो जाए ताकि हम उस अपने आत्मस्वरूप को पहचानने के लिए ज्ञान हासिल कर सकें। नीर चीर विवेक करने की हमारे भीतर समझ उत्पन्न हो जाए हंस के समान। उस ज्ञान को प्राप्त करने की भावना भारण पड़े, वो अभीष्ण ज्ञानोपयोग संवेगो तीर्थंकर जैसी ऊंचाई पाने के लिए निरंतर अपने आत्म कल्याण की विद्या हासिल करने का प्रयत्न। अभीष्ण टू कंटिन्यू, संवेग भी और ज्ञान भी, दोनों अभीष्ण रखो। मैं निरंतर एक ऐसी समझ अपने भीतर उत्पन्न करूं जो मुझे मेरे आत्मस्वरूप की तरफ ले जाए और मैं इस संसार से बच सकूं और अपनी उस आत्म संपदा को प्राप्त कर सकूं। यही है संवेग, धर्म के प्रति रुचि होना, अपने आत्मस्वरूप को जानना, वास्तविक ज्ञान और धर्म के प्रति और धर्मात्मा के प्रति रुचि होना, ये संवेग। ये दोनों ही अभीष्ण शब्द लगा करके निरंतरता के लिए कहा गया है। एक क्षण के लिए विचार, निरंतर ये भावना मेरे भीतर बनी रहे, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम क्या उपाय करें। हंस से हम सीख लें, हंस के साथ पास तीनों क्षमताएं हैं, चाहे तो वो आकाश में उड़ने का आनंद ले सकता है, पानी में तैरने का आनंद ले सकता है, जमीन पर हंस की चाल तो सबसे प्रशस्त मानी गई, वह जमीन पर भी ठीक चलना जानता है, अत्यंत प्रशस्त रूप से चलता है, तो वो तीनों चीजों में माहिर है। हमारे पास भी तीनों चीजें हैं, शरीर है, मन है और हमारी अपनी चेतना है। चेतना तो आकाश की तरह है, अगर हम अपनी उस चेतना को विकसित कर ले तो आकाश में उड़ने का जो आनंद मिलता है हंस को, वही आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं। शरीर हमारा पृथ्वी के समान है, अभी हम पृथ्वी पर भी ठीक से चलने नहीं सीखे, अर्थात हम शरीर में रह करके भी शरीर से मुक्त होने की विद्या नहीं सीखे, तो फिर हमें हंस से ये विद्या भी सीखनी चाहिए कि जमीन पर भी चलते हैं तो ऐसे कि लोग देख करके चकित रह जाएं, इस देह में रहकर कि ऐसे जीते हैं कि लोग चकित हो जाएं देख करके कि भाई ऐसा तो कोई विरला ही हमने देखा कि देह में रहकर भी मानव देह से पार होकर के जीता है। और पानी क्या है, मन है, उतना ही तरल है, तो जैसे हंस पानी में भी ठीक से तैरना जानता है, ऐसे ही मन में भी हमारे उठने वाले शुभ अशुभ विचारों में हम डूबे ना तैरते रहे। चाहे तो हम एक हंस से भी ये तीनों विद्याएं अपने जीवन के लिए सीख सकते हैं। शरीर में ऐसे रहें कि शरीर से अनाशक्त, मन में ऐसे रहें कि उठने वाले शुभ अशुभ विचारों में डूबे नहीं, और चेतना इतनी समृद्ध हो कि वो मन और शरीर इनकी ग्रिप में न रहे, उनसे ऊपर ही रहे। क्या आने वाले समयों में हम ऐसा कोई प्रयत्न करेंगे कि शरीर में रहते हुए भी हम अनाशक्त होकर के रह सकें, सुख दुख के बीच भी हम समता रख सकें और हमारी चेतना के विकास के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहें, उसके आनंद को ही सबसे अच्छा आनंद माना। हम तो शरीर और मन के आनंद में ही खोए रहते हैं, कभी शरीर और मन से ऊपर भी कोई आनंद हो सकता है चेतना का, उसको भी प्राप्त करने के लिए कभी थोड़ा समय निकालें। ये जो अक्षर ज्ञान है वह इसमें माध्यम बन सकता है। जो हमें आचार्य भगवंतों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन दिए हैं, जिनवाणी गुरुजनों के उपदेश, वे सब हमारे लिए साधन है। हम चाहें तो उनके माध्यम से ऐसा ज्ञान जो कि हमारे जीवन को ऊंचा उठा सके वो प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तव में ज्ञान वही सार्थक है जो हमारे जीवन को ऊंचाई देता है, हमारी चेतना को परिष्कृत करता है, हमें शरीर और मन की ग्रिप से निकाल देता है। ज्ञान तो वही है। एक पंडित जी हुए साधु मन में, कर्म सिद्धांत के मर्मज्ञ थे। शाम को 10-25 लोग उनकी सभा में कर्म सिद्धांत के बारे में ज्ञान हासिल करते थे। एक दिन एक व्यक्ति को समाज के बीच में पकड़ करके लाया गया कि इसने चोरी की है। समाज का ही व्यक्ति है इसलिए समाज ही उसे दंडित करेगी, ये पहले सामाजिक नियम था। अन्यत्र कहीं उसे किसी और के सामने दंडित नहीं किया जाए, समाज ही उसे अपने बीच दंडित करके और उस दोष से मुक्त कर दे। एक स्वस्थ, बहुत स्वस्थ प्रक्रिया ये रही। अब तो बदल गया है, अब समाज की किसी पर कोई ग्रिप नहीं रही, ना कोई सामाजिक हमारे नियम, क्योंकि जो नियम बनाएगा उसको तो स्वयं पालन करना पड़ेगा, तो कोई नियम नहीं बनाता क्योंकि खुद पालन करने की सामर्थ्य नहीं है, तो नियम कैसे बनाए। और सारी घटना सामने आई और उस व्यक्ति ने भी स्वीकार कर लिया, क्या मैंने चोरी की, मालूम क्या किया था उसने, उसने अपने घर से 10-15 घर आगे किसी के यहां पर गाय भैंसों को खिलाने के लिए भूसे का बोरा रखा था, वो चुराया था, और वो भी ऐसे खींचते हुए लाया था। सो भूसे के बोरा में नीचे छेद था, तो वहां से उसमें से भूसा गिरता रहा, सो उसके घर पर भूसे की लाइन भी बन गई। सो दूसरे दिन पकड़ा भी गया। होशियारी से करना चाहिए थी चोरी, क्यों होगा बुद्धू रहा होगा, अच्छे से नहीं किया उसने। नहीं, ऐसा विचार अब नहीं आना चाहिए। अब तो ये आना चाहिए कि मैं ऐसी होशियारी नहीं सीखूं। ऐसी होशियारी करके बहुत अपना आहित कर लिया। होशियारी तो वो है कि जिसमें मैं इस तरह के कामों से मुक्त हो सकूं। अभी तो इस तरह के कामों में लिप्त रह करके अपने को होशियार मानते हैं, अपने को समझदार बुद्धिमान मानते हैं, ऐसे कामों में लिप्त रह करके भी। अब मन में ये भावना आनी चाहिए कि ऐसे कामों से मुक्त होने में मैं अपनी चतुराई मानूं, अपनी समझ उस समय मानूंगा कि हां श्रेष्ठ है मेरी, मेरा ज्ञान। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई 2.5-3 रुपए का पूरा भरा हुआ बोरा बिकता है, और भी सामान था, कोई कीमती चीज चुराई होती। लोगों के मन में ये विचार आया तो उससे पूछा कि तुमने यही क्यों चुराया, और भी सामान था उनके यहां पर, कोई कीमती सामान चुरा लेते। तो उसने मालूम क्या जवाब दिया, भैया रोज पंडित जी की सभा में कर्म सिद्धांत के बारे में मैं सुनता हूं, मैंने अपने 2 जून के भोजन में से 1 जून का भोजन रखा कुछ दिन तक, फिर हम दोनों को वह 1 जून का भोजन भी मिलना बंद हो गया, हम पानी पर रह गए। आज तो जब बेटे ने दूध के लिए जिद की और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो दूध के लिए मुझे इंतजाम करना था, तब मेरे मन में यही विचार आया कि अब और कोई उपाय नहीं है, जब कमाऊंगा चाहे पैसे तो उसका ज्यों का त्यों बोरा चुकता कर दूंगा, पर अभी तो उठा के ले आऊं। सो उठा के ले आया, 3.5 रुपए चाहिए थे इसलिए 3.5 का ही सामान चुराया, मुझे अधिक तो चाहिए नहीं थे। पंडित जी ने कहा कि जितने तीव्र कषाय के साथ में कोई कार्य करोगे उतना गहरा कर्म बनेगा। मुझे कर्म बंध से भय है, मैं ऐसे तीव्र कर्म नहीं बांधना चाहता। कर्म सिद्धांत पढ़ा हुआ जीवन में आ भी गया उसके, और हम कितना ज्यादा जानते हैं। अभी कई अभ्यास करने वाले होंगे जो आठ कर्मों का, किस कर्म का कहां तक उदय है, कहां तक बंद है, कितनी सत्ता कहां तक है, ये सब राई रत्ती जानते होंगे, लेकिन फिर भी राग द्वेष में कमी नहीं आती है। तो वो ज्ञान हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाएगा भैया। मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है, हम निरंतर एक ऐसा ज्ञान हासिल करें जो हमें हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में कारण बने, हमारी आत्म संपदा हमें दिला सके और हमें स्वप्न से जागृत कर सके, सत्य का परिचय करा सके। स्वप्न और जागृति दोनों ही हमारे जीवन में हैं। कैसे? रात में सो जाते हैं उसको हम स्वप्न मानते हैं, सुबह जाग जाते हैं उसे हम जागृति मानते हैं। ये तो सभी जीव के साथ है। वास्तव में स्वप्न क्या है? ये संसार और इस संसार में मेरा राग द्वेष, यह स्वप्नवत ही है। जागृति तो तब है जब मेरे भीतर वितराग भाव जागृत हो, वो जागृति है। वरना तो यहां चाहे आंख खुली हो और चाहे आंख मूंदी हो, सब कुछ स्वप्नवत ही है। यानी जिसे प्राप्त करने की इच्छा तो होती है पर जो प्राप्त नहीं होता वही तो स्वप्न है। मैं कितनी चीजों को प्राप्त करने की इच्छा करता हूं, कहां प्राप्त होती है? कुछ चीजों का संयोग होता है, लेकिन संयोग होते होते और वियोग की पीड़ा सहन करना पड़ती है। तो ये स्वप्न ही तो है। जैसे सपने में मूर्ख राग पद पायो उठ मूर्ख रुदन मचाए, वही स्थिति हमारी होती है। कुछ प्राप्त होता है और फिर वह भी स्वप्नवत, जैसे नींद खुलने पर जो जो रात में देखा था वो सब सुबह हाथ कुछ नहीं आता, सारी रात जमीन पर लेटे लेटे और हम स्वप्न देखते रहे कि किसी महल में राजसी ठाट बाट के साथ गद्दी पर सोए हुए हैं, और सवेरे अगर नींद खुल जाए तो कहां राजपाट है और कहां गद्दी है, वही ठाट है और वही जमीन है। क्या मिला? स्वप्न से प्राप्त नहीं होता। स्वप्न से प्राप्ति का भय और आश्वासन अवश्य होता है। ऐसे स्वप्न को मैं तोड़ सकूं ऐसा ज्ञान मैं हासिल कर लू, मैं जागृत हो जाऊं एक बार उस तरह से कि ये सारी चीजें स्वप्नवत मालूम पड़ने लगे, ताकि मुझे फिर ये आवश्यकता न करे। स्वप्न टूट जाने पर जैसे हंसी आती है, ऐसे ही इन संसार के संयोग वियोग को देख करके मैं प्रसन्न ही बना रहूं। संयोग में ज्यादा हर्ष ना करूं, वियोग में विषाद ना करूं। क्या ऐसी कोई समझ हमारे भीतर, ऐसा कोई ज्ञान हमारे भीतर हासिल नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं। एक राजा अपने एक ही पुत्र की बीमारी से अत्यंत दुखी है, उसके सिराने बैठा है, सेवा कर रहा है। राज वैद्य तो सेवा करी रहे हैं, राजा स्वयं रानी साहबा स्वयं उसके सिराने बैठी है सेवा में। एक दिन दो दिन निकल गए हैं, बेहोशी टूट ही नहीं रही है। एक बार आंख खोल के देख तो लेता राजकुमार तो पिता को शांति हो जाती, लेकिन बेहोशी नहीं टूट रही, राजा को नींद ही नहीं आती है। तीसरे दिन अचानक राजकुमार की आंख खुलती है और वो पानी मांगता है। सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है कि राजकुमार ने आंख खोली है, पानी मांगा है, अब तो स्वस्थ हो जाएगा। रानी साहबा भी राजा को कहती हैं कि तीन दिन से तुम्हारी आंख भी नहीं लगी, अब तो राजकुमार ठीक है, थोड़ा विश्राम कर लो, यहीं बैठे बैठे ही सही, मैं हूं अभी, मैं देख रही हूं, मैं संभाल लूंगे। राजा थोड़ा सा निश्चिंत होकर के और टिक करके जैसे ही नींद लेता है, उसे एक स्वप्न दिखना शुरू होता है। स्वप्न में वो जितना बड़ा राजा अभी है उससे भी बड़ा राजा होता है, और स्वप्न में उसके एक पुत्र नहीं 12 पुत्र हैं, अपार वैभव है, वो उसी सबके बीच में आनंदित है। और इतने में ही उसे किसी की चीख सुनाई पड़ती है तो नींद खुल जाती है। रानी साहबत चीख करके उससे जगाती हैं कि उठो, क्षण भर पहले जिसने आंख खोल के पानी मांगा था अब जीवन भर आंख नहीं खोलेगा ऐसा लग रहा है। और राजा साहब ने आंख खोल करके राजकुमार की मृत देह को देख करके जोर से ठहाका लगाया तो सब शक्ति में आ गए कि लगता है इस दुख को न झेल पाने की वजह से राजा पागल हो गए। तो सबने हिलाया, समझाया कि क्या करते हो आप, हंस रहे हो, रोने का अवसर है। उसने कहा कि नहीं, अब समझ में आया कि वास्तविकता क्या है। वो जो सपने में ढूंढा पुत्र थे, अपना वैभव था, जो तुम्हारे चीखने से नींद खुलने पर टूट गया उसके लिए रो, या कि एक जो ये सामने है जिसका कि मरण हो गया उसके लिए रो, अब किसी के लिए नहीं रोऊंगा, अब मैं अपनी प्रसन्नता को निरंतर बनाए रखूंगा। अब मुझे ये समझ पैदा हो गई है कि या तो खुली आंख हो चाहे बंद आंख हो, सारी चीज स्वप्नवत ही है, मिलती मिलती मालूम पड़ती है, लेकिन अगले क्षण ही वियोग को प्राप्त हो जाती। ये वास्तविकता का बोध हम चाहें तो कर सकते हैं, रोज रोज ऐसा अभ्यास करने पर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। किसी विरले को होता होगा या कोई ऊपर से ऐसे टपकता होगा जिसको होता होगा, नहीं, हम और आप सबके भीतर ऐसी सामर्थ्य है। बस इतना है कि पुरुषार्थ जिस दिन हम अपना जागृत कर लेंगे उस दिन हम आसानी से उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी उस आत्म संपदा को हम सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि जो भी हम ज्ञान हासिल करें वो श्रद्धा पूर्वक करें और अपने आचरण को परिवर्तित करने की दृष्टि से करें। बस चार बातें जाने, 40 न भी जाने, लेकिन चार बातें भी वो जाने जिससे कि मेरा कल्याण हो सके, प्राणी मात्र का कल्याण हो सके। वो जानकारी ही श्रेष्ठ है, और अत्यंत श्रद्धापूर्वक जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वही जानकारी, वही समझ हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, क्योंकि श्रद्धा ज्ञान के साथ आने वाले अहंकार को तोड़ देती है। अगर अकेला ज्ञान होगा तो अहंकार के बिना नहीं रह सकता, और अगर श्रद्धापूर्वक ज्ञान हासिल किया जाएगा तो अहंकार आएगा नहीं। और साथ में अगर श्रद्धापूर्वक ज्ञान हासिल किया होगा तो जीवन को परिवर्तित किए बिना नहीं रहा होगा, रहेगा, ये कसौटी है इस बात की। हम लोग अपने उस ज्ञान को इस कसौटी पर कस करके देखें, कितना तो हम ज्ञान हासिल करते हैं, कितना तो पढ़ते लिखते हैं, कितना तो कितनी बातें सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन कसौटी पर कस के देखें कि अगर मैंने श्रद्धा के साथ इन चीजों को हासिल किया है तो ये मेरे जीवन को परिवर्तित जरूर करेंगे। महाराज कह रहे थे कि कोई हमारी बात नहीं मानता, पर मैंने पिछले दिनों में ये देखा है कि जिनने बात मानी है उन्होंने अपने जीवन को बदलने पर ही बात मानी है। बात तो सब मानते हैं लेकिन जीवन बदल करके बात को मानना युधिष्ठिर की तरह, उसमें तो कुछ ही लोग पास हो पाते हैं, पर हुए हैं लोग पास। मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूं, मैं इस आशा और विश्वास से भर करके जाऊंगा आचार्य महाराज की आज्ञा के अनुरूप, उनके आदेश के अनुसार जाऊंगा, लेकिन इस आशा और विश्वास से भर के जाऊंगा जब भी जाऊंगा कि लोग मेरी कही हुई बात को आज नहीं तो कल नहीं तो इस जीवन के अंत क्षणों में भी अगर याद आ जाएगी तो अपने जीवन को परिवर्तित करने में देर नहीं करेंगे। हमारे अपने जीवन में ये सब बातें हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए हैं। हमारे अपने संस्कारों की प्रबलता इतनी ज्यादा है कि हम उन्हें सहसा तोड़ नहीं पाते, पर तोड़ने की भावना अगर आ जाए उन खोटे संस्कारों को तो कोई नहीं रोक सकता। फिर ये समझ ये ज्ञान हमारे उन खोटे संस्कारों को तोड़कर हमारे भीतर श्रेष्ठ संस्कार लाने में कारण बनेंगे। हमारे और दूसरे के कल्याण में हमारा ज्ञान कारण बनने लगेगा। एक छोटी सी घटना कहूं और हमारे जीवन में आज हमने दो बातें सीख ली कि अब जो भी समझ हम पैदा करेंगे अपने भीतर, वो समझ हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली होगी, और इतना ही नहीं, हमें हमारी अपनी आत्म संपदा से परिचित कराने वाली होगी। धर्म और धर्मात्मा के प्रति रुचि होना, ये हमारे भीतर जागृत होगा, और इन दोनों भावनाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को आसानी से ऊंचा उठाएंगे। एक राजा बीमार पड़ गया, अस्वस्थता के चलते किसी ने सलाह दी कि आपको तो किसी बालक का मांस खाने पर ही इस रोग से मुक्ति मिल सकेगी। राजा थोड़ी देर तो मुश्किल में पड़ा, लेकिन अगर हमारे पास समीचीन ज्ञान नहीं है तो हमारे अंदर भावना क्या आएगी कि हमारा जीवन बचना चाहिए, दूसरे का चाहे नष्ट भी हो जाए। और राजा के भीतर भी ऐसी ही भावना आ गई, मंत्रियों से कहा कि उपाय करो, इतना ही पर्याप्त है। मंत्रियों ने सारे शहर में मुनादी करा दी कि जो भी अपने बालक को बेचना चाहे, राजा उससे मुंह मांगी कीमत पर खरीदने तैयार है। और एक व्यक्ति तैयार हो गया कि मेरे पुत्र के वजन की और पुत्र के ही ऊंचाई की सोने की प्रतिमा अगर कोई उसे दे तो वो अपने पुत्र को दे सकता है। ये घटनाएं कितनी सच्ची हैं या नहीं है, इससे अपन को मतलब नहीं है। ऐसा ही हमारे अपने जीवन में कभी घटित हो तो हम सावधान हो जाएं, सिर्फ इसके लिए है। और उतना सोना उसे दे करके उस बालक को राजा ने प्राप्त कर लिया। पुरोहित और न्यायाधीशों से पूछा गया कि आपका क्या कहना है, इस बालक के को नष्ट करके इसका मांस राजा को देने में कोई हानि तो नहीं है, आपका न्याय क्या कहता है? तो जो न्यायाधीश थे उन्होंने भी कहा कि राजा का जीवन अधिक कीमती है क्योंकि वह प्रजा का पालन करता है, इसलिए अगर प्रजा का एक व्यक्ति अपने प्राण देकर के भी राजा को बचाए तो इसमें कोई भी अनुचित नहीं है। ये भी हो गया और राजा ने भी ऐसा सुन करके आदेश दे दिया, तलवार उठ गई उस बालक के ऊपर और तलवार गिरे इससे